मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार मित्रों। कल गणतंत्र दिवस है और छुट्टी होने के कारण कल सीधे आप सबसे मैं बात नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं। मुझे ऐसा लगा कि गणतंत्र दिवस एक बहुत सही अवसर है जब हम अपनी सेना के शौर्य को याद करें। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं कि हमारी जो सेना है, सेना की हमारी जो तीनों विंग्स हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनफैक्ट इससे हम अपने जीवन के लिए क्या संदेश ले सकते हैं। हो सकता है कि आपने महसूस किया हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का हमारा जो टेलीविजन चैनल है और टेलीविजन चैनल के जो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम हैं, वो देखिए आपकी सेना के शौर्य पराक्रम और उनके प्रति अपने भावनात्मक लगाव को व्यक्त करने से सराबोर हैं। कौन बनेगा करोड़पति के आखिरी आप एपिसोड को याद करके देखिए, हमारे सेना के दो नौजवान आए थे और जब वे अपने कर्तव्य के बारे में बता रहे थे, अपनी वीरता के बारे में, तो शायद ही कोई ऐसा दर्शक होगा जिसकी आंखें डबडबा न गई हो। आप बकायदे याद करने की कोशिश कीजिए जो अभी अभी हमारे जो कपिल शर्मा शो है, वह जो प्रोग्राम है, उसमें भी आपको इस तरह के सीन, इस तरह की बातें देखने और सुनने को मिली है। इंडियन आइडल को याद कीजिए, इंडियन आइडल में भी आपने देखा कि किस तरह से सेना के वीर जो जवान हैं, हमारे जो जाबाज हैं, उनको बुलाया गया था और उनकी कहानियों को मंच पे सुनाया गया और किस तरह सबकी आंखें केवल डबडबाई ही नहीं थी बल्कि बह रही थी। क्या सच में हम इन बातों को महसूस कर पाते हैं? दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि हम जिन चीजों का अनुभव खुद नहीं करते हैं उन्हें कितना महसूस कर पाते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये रही कि मैं सेना में तो कभी नहीं रहा प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उनके साथ कुछ दिन गुजारने का मौका जरूर मुझे मिला, खासकर जब मैं मसूरी ट्रेनिंग में एकेडमी में था। उस दौरान मैं आपको 1984-85 की बात बता रहा हूं, तो 15 दिनों का एक ट्रैकिंग का प्रोग्राम होता था, मतलब आप जंगलों में जाते थे, पहाड़ पर जाते थे ट्रैकिंग के लिए और बकायदे सारा अपना सामान अपनी पीठ में लाद करके और पैदल आप चलते थे, ज्यादातर पैदल चलते थे और जहां वैसी स्थिति होती थी तो बकायदे बस से भी हम लोगों को ले जाया जाता था। मेरा जो ग्रुप था वह उत्तरकाशी का ग्रुप था, उत्तरकाशी हम लोग गए थे, उत्तराखंड में है उत्तरकाशी और वहां चाइना बॉर्डर पड़ता है। दोस्तों, लगभग 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम लोग गए और बकायदे वहां खंदक में सैनिकों के साथ रहे। इतनी ठंड कि अगर बहते हुए पानी में आपकी उंगली डूब जाए और जब आप उसे निकालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी उंगली गायब हो चुकी है, उसके अंदर का जो रक्त है वो बर्फ में तब्दील हो गया, इतनी ठंड। कोई ऐसी जमीन नहीं जहां पर आप सच पूछिए तो वनस्पति उगी हुई देख सके, मिट्टी आपको उस तरीके से दिखाई दे सके, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। और ऐसे में हमारे जवान वहां रह रहे हैं। और मैं तो यहां की एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, वो जो पूरा ट्रैकिंग का जो हमारा दौर था वो इसी तरह से आर्मी कैंप में रहना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ खेलना, देखना, बातचीत करना, इन्हीं सब में हम लोगों का वक्त गुजरा करता था। और मुझे फिर याद है कि जब हम लोग सिक्किम की यात्रा पर गए थे, मैं और मेरी पत्नी, तो फिर हम लोग नाथुला दर्रा के लिए गए और वहां के बॉर्डर पर पहुंचे, वो भी लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर, और वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मतलब मेरी पत्नी तो थोड़ी सी ऊंचाई तक चढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब ऊपर नहीं चढ़ सकती क्योंकि सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो वहां ही फिर उनको मैंने छोड़ा और मैं फिर ऊपर तक गया। आप सोच करके देखिए कि हम आम आदमी जिस जगह पर जाकर सांस नहीं ले सकते, अपने उंगली के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते, वहां हमारे ये नौजवान लगातार खड़े होकर पहरा दे रहे होते हैं। दोस्तों, सच में क्या संवेदना के स्तर पर हम उनके इस मस्तिष्क में, उनके इस भावना जगत में घुसकर उसकी यात्रा कर पाते हैं? मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, तब हमें पता लग पाएगा कि सच में इनका जो त्याग है, इनका जो बलिदान है, चलिए त्याग और बलिदान तो बाद में होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो कितने बड़े साहस का परिचय दे रहे हैं। और ये त्याग तो दिखा ही रहे हैं कि घर बार से बिल्कुल कटे हुए हैं, कब कौन सी कॉल आ जाए और कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो रही है, इन सब इनके बहुत जल्दी ट्रांसफर होते रहते हैं। अब कहाँ है कहाँ नहीं है, कभी आप नक्सलवादियों से लड़ रहे हैं, कहीं आप आगजनी और दुनिया भर की जो दूसरी प्राकृतिक आपदा आ गई है, आप उनमें बचाव का काम कर रहे हैं। और ये आपको लगता होगा कि जब युद्ध नहीं होते तो ये आराम से बैठे होते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति भवन के कैंपस में मैं 5 साल रहा हूं, वहां की जो सुरक्षा अंदर की होती है वो आर्मी के पास ही होती है, और बकायदे मैंने देखा कि आर्मी के लोग जो खड़े होते थे, और वहां बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, तो आप उस पूरे के पूरे एरिया में घूमिए तो आपको वृक्ष की कोई पत्ती जमीन पर दिखाई नहीं देगी, यानी कि वो खड़े होते हुए भी खड़े नहीं रहते, और जैसे कोई वृक्ष की पत्ती गिरी कोई डाली हुई, इतनी साफ सफाई। हैदराबाद में जो सिकंदराबाद है, खास जो छावनी एरिया है, वहां तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी लगभग 1-1.5 महीने के लिए जाते ही थे हर साल, है ना, वो राष्ट्रपति निलयम है वहां, तो वो छावनी एरिया में है, तो हम लोग भी जाकर के 1-1.5 महीने लगातार रहते थे, वो पूरा छावनी एरिया है, इतना साफ सुथरा, शांत, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजें की देख करके आश्चर्य होता था और लगता था कि यार काश कि पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो। तो दोस्तों, ये हमारी आर्मी है। आर्मी का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं है, आर्मी का मतलब है त्याग की भावना, बलिदान की भावना, साहस, लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे बड़ी बात है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसीलिए हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे पूरी की पूरी पीढ़ी को, सभी नौजवानों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, गजब का अनुशासन। और फिर फिटनेस, उनकी फिटनेस के सामने तो सच पूछिए तो दिल खुश हो जाता है। देखिए आपके बिल्कुल किस तरीके से, आपने अगर टेलीविजन चैनल में इन प्रोग्रामों को देखा होगा तो देखिए उनके खड़े होने के अंदाज को देखिए, बात करने के उनके तौर तरीकों को देखिए, उनके हेयर कट को देखिए, सारी गौर कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि नहीं, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर का ही आप पालन कर रहे हैं, उनके तो पूरे के पूरे व्यक्तित्व से अनुशासन जैसे टपकता रहता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि खासकर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें अपनी सेना के जो गुण हैं उनको सोच सोच करके और संवेदना के स्तर पर उनको महसूस कर करके उनके इन तत्वों को अपने अंदर समाहित करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हम आजाद हैं, आजाद होने के बाद हमने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान घोषित किया। दोस्तों, ये हमारे सैनिकों के और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बलिदानों से ही संभव हो सका है, तो निश्चित तौर पर हमें उन्हें कम से कम ऐसे अवसर पर तो निश्चित तौर पर याद करना चाहिए, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वो यही कि जो उन्होंने हमें सौंपा है उसे हम न केवल बचाए और बनाए ही रखें बल्कि और भी अधिक बेहतर बना सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें इसी रूप में याद कर सके कि हमने उन्हें एक बहुत अच्छा समाज और एक बहुत अच्छा राष्ट्र सौंपा है। तो दोस्तों, आज अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।